हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजाता है और मैं आपके आसपास के ही किसी गांव शहर में रहती हूँ। मेरी उम्र 42 साल है और मैं एक साधारण मगर एक भरपूर बदन की मल्लिका हूँ। पति है, बच्चे हैं, घर परिवार है, पति से खुश हूँ, गांव में अपना घर है, कभी किसी और को देखकर मन नहीं डोला। सच कहूँ ताओ, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि कभी किसी पराए मर्द के साथ कोई चक्कर चलेगा। मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो कोई टाल नहीं सकता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बच्चे बड़े हो गए थे, सो काम को बढ़ाने के लिए मेरे पति ने अपना बिजनेस मुंबई में शिफ्ट कर लिया। काम अच्छा चल पड़ा, बेटी को भी आगे पढ़ने के लिए मुंबई में ही एडमिशन दिलवा दिया। हम सब मुंबई में रहने लगे। मगर कुछ समय बाद गांव से इनके पिताजी का खत आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम गांव गए तो पिताजी की देखभाल के लिए इन्होंने मुझे गांव में ही रहने को कहा। अब मुंबई छोड़कर गांव में रहना किसे अच्छा लगेगा, मगर मुझे रहना पड़ा। हफ्ते 10 दिन बाद ये भी गांव का चक्कर लगा जाते थे। मैंने बड़े जी जान से पिताजी की सेवा की, क्योंकि जितनी जल्दी पिताजी ठीक होते उतनी जल्दी मैं वापस अपने घर जा सकती थी। अब मैं भी इंसान हूँ। दिन तो काम धंधे में कट जाता था, मगर रात को जान निकाल जाती थी। क्या करती, जब ज्यादा काम दिमाग को चढ़ता तो उंगली से हस्तमैथुन करती, कभी कभी गाजर मूली का भी सहारा लेती। मगर मर्द का स्पर्श मर्द का ही होता है। मर्द के लंड का विकल्प तो था मेरे पास, मगर मर्द के चुंबबों का विकल्प कहाँ से लाती, मर्द के सख्त हाथों से स्तनों को मसलने का विकल्प कहाँ से लाती। मैंने इनसे बहुत बार कहा कि मुझे वापस ले चलो, मगर ये संभव न हो सका। पड़ोस वाली काकी का बेटा कोई 24-25 साल का था। वो अक्सर हमारे घर आता, घर के बहुत सारे काम वो करवा जाता, चोरी चोरी मुझे ताड़ता। मैं समझती थी कि वो क्या चाहता है, मगर मैं नहीं चाहती थी सो उसे कभी लाइन नहीं दी। वो अक्सर मेरे भरपूर यौवन को निहारता, मेरी तारीफें करता, मगर मैं नहीं मानती। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। एक दिन शाम की चाय का गिलास हाथ में लेकर मैं अपने घर की छत पे गई। छत पे एक चौबा है, मैं अंदर चली गई। शाम के करीब 5:30 का समय होगा। मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई। पीछे रमेश भाई साहब का घर था। वो शायद कहीं से आए थे। उनकी बीवी गुजर चुकी है, दोनों बेटे बाहर गांव में काम करते हैं। 48 साल के थोड़े से सांवले मगर बहुत ही बलिष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। कभी कभी आते हैं हमारे घर में। मैं वैसे ही बेख्याल सी खड़ी देख रही थी। उन्होंने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गए। उनका बाथरूम मेरी खिड़की के बिल्कुल नीचे था और आम गांव के बाथरूम की तरह बिना छत के था। उन्होंने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, चौड़ा सीना, मजबूत कंधे, गोल जांघें, मगर सबसे बड़ी बात एक बड़ा सा काला लंड जो उनकी दोनों जांघों के बीच झूल रहा था। मैंने जब उनका लंड देखा तो मेरे तो सारे बदन में झुरझुरी से दौड़ गई। मैं खिड़की से हट गई। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस तरह से किसी को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। मैंने बेड पे बैठे बैठे चाय की चुस्की ली, मगर अब तो मुझे चाय का भी स्वाद नहीं आ रहा था। इसी कश्मकश में मैं फिर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। रमेश जी नहा चुके थे और अपना बदन पोंछ रहे थे। मेरे दिल में चाहत उठी, लाइए रमेश भाई साहब, तौलिया मुझे दीजिए, मैं आपका बदन पोंछ देती हूँ। मैं ऊपर से देखती रही। उन्होंने अपना सारा बदन पोंछा, अपना लंड भी पोंछा। उफ़काश ये लंड मेरे हाथ में होता। उन्होंने अपने कपड़े पहने और चले गए, मगर वो मेरी जिंदगी में आग लगा गए थे। मैं ऊपर खिड़की में खड़ी कितनी देर खड़ी उस बाथरूम को ही देखती रही। उस रात मैंने एक खीरे को रमेश जी का लंड मानकर अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद तो मैं हमेशा अपनी शाम की चाय ऊपर वाले चौबारे में पीने लगी, क्योंकि शाम को ही रमेश अपने काम काज से आते और आकर सबसे पहले नहाते और फिर अपनी चाय बनाकर पीते थे। एक दिन मैंने देखा कि रमेश जी नहाने से पहले हस्त मैथुन कर रहे थे और ये जायज़ भी था। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जब वो नीचे बाथरूम में मुठ मार रहे थे मैं ऊपर से उन्हें देखकर अपनी छूत सहला रही थी। वो तो खैर थे ही नंगे, मगर मैंने भी ऊपर अपना एक हाथ अपनी साड़ी में डाल रखा था और दूसरे हाथ से अपने ब्लाउज और ब्रा को उठाकर अपने दोनों स्तन बाहर निकाल रखे थे। वो किसके बारे में सोच रहे थे मैं नहीं जानती, मगर मैं तो उनके बारे में ही सोच रही थी। जब उनका वीर्यपात हुआ तो उनके लंज से वीर्य की पिचकारियां निकली और सामने दीवार पे गिरी और मैं सोच रही थी कि काश ये वीर्यपात मेरे पेट और मेरे स्तनों पे हुआ होता। मैं और बर्दाश्त न कर सकी और बिस्तर पे लेट गई। मैंने अपनी साड़ी ऊपर उठाई और अपनी दोनों टांगे और छूत बाहर निकालकर अपनी बड़ी उंगली को अपनी छूत में अंदर बाहर करने लगी और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकाल रही थी, रमेश जी चोदो मुझे, रमेश जी चोदो मुझे। और थोड़ी सी देर में ही मैं भी झाड़ गई। मेरी छूत से भी पानी से फुवारे छूटे और बिस्तर की चादर पे एक बड़ा सा गीला गोल घेरा बन गया। कितनी देर में वैसे ही नंगी हालत में बेड पे लेटी रही। मुझे इस बात का भी विश्वास था कि यहाँ ऊपर कौन आने वाला है। खैर, अब दिन ब दिन रमेश जी मेरे दिमाग में घर करते जा रहे थे। मैं उनसे चुदने को बहुत ही ललायत हो रही थी। बीच में जब कभी मेरे पति गांव आते तो मैं बड़ा खुल के उनसे चुदाई करती। सारी सारी रात हम दोनों नंगे सोते, एक रात में दो दो तीन तीन बार चुदाई करते। मुझे लंज चूसना पसंद नहीं, मगर मैं फिर भी थोड़ा बहुत पति को गरम रखने के लिए चूस लेती। कभी कभी वो कहते, सुजाता तेरी छूत तो चोदली, अब तेरी गांड मारने का दिल कर रहा है, तो मैं खुद तेल लाकर उनके लंज और अपनी गुदा पे लगाती। वो मुझे उल्टा लिटा कर मेरे ऊपर लेटते और अपना तेल से छुपड़ा लंज मेरी गुदा में डाल देते। मुझे थोड़ा दर्द होता, मगर उनके मज़े के लिए मुझे सब मंजूर था। मगर जब भी हम सेक्स करते, न जाने क्यों, हमेश रमेश जी ही मेरे ख्यालों में होते। मैं अपने पति में भी रमेश जी को ढूंढती। एक दिन शाम को मैं ऊपर से खड़ी रमेश जी को नहाते हुए देख रही थी। नहाने के बाद जब वो लंज को पहुंच रहे थे तो न जाने क्यों अपने लंज से खेलने लगे। खेलते खेलते लंज तन गया। जब तन गया तो वो मुथ मारने लगे। उन्हें देखकर मैं भी गर्म हो गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी साड़ी वगैरह उतार कर मैं भी बिल्कुल नंगी हो गई। जब उनका छूटा तो आनंद में उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया और ऊपर उन्होंने मुझे खिड़की में खड़ी देख लिया। बेशक मैं एकदम से हट गई, मगर वो मुझे देख चुके थे। मुझे बहुत शर्म आई, मगर अब क्या हो सकता था। खैर, अगले दिन मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी, मगर 5 बजते बतजे मैं चाय का गिलास लेकर फिर से खिड़की में खड़ी थी। जब रमेश भाई साहब आए तो उन्होंने ने मुझे हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मैंने सर झुकाकर नमस्ते की। उन्होंने कपड़े उतारे और रेजर लेकर अपनी झांट साफ करने लगे। पहले लंड के आसपास के बाल साफ किए, फिर आंड के बाल साफ किए। उसके बाद लंड हिला हिला कर उसे खड़ा किया। जब लंड तन गया तो वो नीचे बैठ गए और ऊपर देखने लगे। मैं भी बेशर्मों की तरह ऊपर खड़ी उन्हें देख रही थी। उन्होंने अपना लंड अपने हाथ में पकड़ा और इशारे से मुझे पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने स्माइल किया और एक फ्लाइंग किस मेरी तरफ फेंकी। उसके बाद कितनी देर हम एक दूसरे को इशारे करते रहे। इस बार उन्होंने ने मुझे दिखा के मुठ मारी और अपने वीर्य की एक बूंद अपनी उंगली पे लगाकर मेरी तरफ उछाली। उनकी इसी अदा पे मैं तो झाड़ गई। उसके बाद भाई साहब अक्सर हमारे घर आने लगे। वो पिताजी के पास बैठकर बहुत सारी बातें करते, मैं सिर्फ चाय देने के लिए जाती। हम सिर्फ एक दूसरे को देखते, नमस्ते से ज्यादा हमारे बीच कोई बात न होती, क्योंकि पिताजी वहाँ होते, मगर आंखों आंखों में हम एक दूसरे से सब कुछ कह देते। वो मेरे चेहरे की, मेरे होठों की, मेरे स्तनों की, मेरे भरी भरकम छूतड़ों की सबकी तारीफ़ करते और मैं उनकी नज़रें जब अपने बदन पे महसूस करती तो आंखों आंखों में ही उनका शुक्रिया भी करती। एक दिन शाम को मैं चाय बना रही थी कि पिताजी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई तो वहाँ रमेश जी भी बैठे थे। मैंने मुस्कुरा कर उन्हें नमस्ते किया। पिताजी बोले, अरे बहू, रमेश आया है, एक कप चाय और बना लेना। मैंने जी पिताजी कहा और रमेश जी को एक और स्माइल देकर किचन में आ गई। अगस्त का महीना था, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही थी। मेरा मन तो वैसे ही उतावला हो रखा था। रसोई में आलू की बोरी रखी थी। मैंने अपनी साड़ी उठाई और उस आलू की बोरी के ऊपर बैठ गई और अपनी छूत एक आलू पे रगड़ के बोली, रमेश जी अब आप नीचे आओ और मैं ऊपर बैठकर खुद करूंगी। सच में मैं आंखें बंद करके रमेश जी से चुदाई का एहसास कर रही थी। तभी मैंने अपना होश संभाला और चाय के साथ पकोड़े भी तलकर उनको दिए। हल्की बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बादल गई थी। पिताजी ने रमेश जी को खाना की भी दावत दे दी। मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। ना जाने मेरे मन में क्या आया, मैं स्टोव में गई और स्टोव के पीछे वाले कमरे में एक गद्दा बिछा आई। बारिश तेज पर तेज होती जा रही थी। खाना वाना खाकर रमेश जी पिताजी के कमरे में ही लेट गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी, मगर मेरी नींद न जाने कहाँ उड़ी थी। घड़ी की टिक टिक 10 नवंबर 12 बाजा चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि हस्त मैथुन करके अपनी प्यास शांत कर लूँ, मगर मन ने कहा नहीं, क्या पता आज रात और मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाती। खैर, जब काफी देर नींद नहीं आई तो मैं उठकर बाहर पेशाब के लिए जाने लगी। जब कमरे से बाहर निकली तो सामने ही रमेश जी खड़े थे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे धकेल के कमरे के अंदर ले गए। ओ सुजाता, कब से इस दिन का इंतजार था, कितनी देर से तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, अब सब्र नहीं होता, जान, कहकर उन्होंने ने मेरे होठों को चूम लिया। मैं तो सकपका गई। रमेश भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो, पिताजी जाग जाएंगे। मगर वो तो सब कुछ भुला कर सिर्फ मुझे यहाँ वहाँ चूमने में लगे थे। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी आवाज़ पिताजी तक पहुँचे। मैं उन्हें अपने साथ स्टोर रूम के पीछे वाले कमरे में ले गई। वहाँ पे मैंने दरवाज़ा बंद करके मोमबत्ती जला ली, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से लाइट की प्रॉब्लम थी। मोमबत्ती की रोशनी में जब उन्होंने ने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं भी उनसे लिपट गई। हम दोनों ने एक दूसरे के होंठ चूसे, कभी मैं तो कभी वो, कभी नीचे वाला तो कभी ऊपर वाला, एक दूसरे के होंठ चूस रहे थे। होंठ चूसते चूसते हमने एक दूसरे के मुंह में अपनी अपनी जीभ भी घुमा दी। दोनों ने एक दूसरे की जीभ को चूसा। मैंने अपने हाथ उनके चौड़े विशाल कंधों पे रखे थे तो वो अपने हाथों से मेरी पीठ और मेरे चूतर सहला रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने ने मेरी साड़ी खोल दी। अब मैं सिर्फ चोली और पेटीकोट में थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों में मेरे दोनों स्तन पकड़ लिए और खूब जोर जोर से मसले। मुझे अपनी छूत में गीलापन और अपने स्तनों में कड़ापन महसूस हो रहा था। फिर रमेश जी ने मुझे अपने से अलग किया और अपने कपड़े उतारने लगे। मैं जाकर गद्दे पे लेट गई। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा रमेश का काला मस्त लंज, जो अभी तक पूरी तरह से तना नहीं था, और उसके पीछे झूलते उनके चीकू जैसे दो आँख। जब वो पूरे नग्ना होकर मेरी तरफ आए तो मैंने खुद ही अपना पेटीकोट ऊपर उठाया और अपनी टांगे फैलेकर उन्हें अपने अंदर आने का न्योता दिया। उन्होंने मेरी छूत को देखा, फिर झुककर मेरी छूत का एक चुंबन लिया। छूत के बाद मेरी जांघों, कमर, बगलों पर चुंबनों की बौछार कर दी। मैं तो तड़प उठी। मैं तो चाहती थी कि रमेश जी झट से अपना लंड मेरी छूत में डाले और मुझे चोट दे। सो जब वो मेरे स्तनों को दबा रहे थे और मेरे क्लीवेज में अपनी जीभ घुमा के चाट रहे थे, तो मैंने उनका लंड, जो अब पूरा तन चुका था, अपने हाथ में पकड़ा और अपनी छूत पे रखा, और अपने दोनों हाथ उनके छूतरों पे रखकर उन्हें आगे को दबाया। रमेश जी मेरे मन की बात समझ गए और उन्होंने ने अपना लंड मेरी छूत में ठेल दिया। बड़े आराम से उनका लंड मेरी छूत में समा गया। वो बड़े आराम से मुझे चोद रहे थे। मैंने खुद अपना ब्लाउज और ब्रा ऊपर उठाकर अपने दोनों स्तन उनको पेश किए, जिसे उन्होंने अपने मुंह में लेकर चूसा। आह, क्या आनंद था। मुझे लगा रहा था कि मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। मैंने कहा, रमेश जी, मैं ज्यादा देर सहन नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से सखलित करवा दो, जोर जोर से करो। रमेश जी ने वैसे ही किया। करीब एक मिनट के भीतर ही मैं सखलित हो गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से रमेश जी को अपने में भींच लिया। मेरी आंखों से आंसू निकाल गए। इस आनंद के लिए मैं इतने दिनों से तरस रही थी, आखिर वो आनंद मुझे मिल ही गया। उसके बाद करीब 40 मिनट में रमेश जी भी मेरे अंदर ही सखलित हो गए। उनके वीर्य की पिचकारियां मैं अपनी छूत में महसूस कर रही थी। मुझे चोदकर वो मेरे पास ही लेट गए। उसके बाद हम आपस में धीरे धीरे बातें करते रहे। करीब आधे घंटे बाद रमेश जी बोले, सुजाता, एक बार और करें। मैंने कहा, मैं तो खुद आपसे ये कहने वाली थी। वो बोले, देखो, तुमने तो मुझे कई बार नंगा देखा है, पर मैंने तुम्हें कभी नंगी नहीं देखा। मैं तुम्हें बिल्कुल नंगी देखना चाहता हूँ। मैंने भी जवाब दिया, अब तो मैं आपकी हूँ, मुझे नंगी देखना चाहते हो तो खुद नंगी करो और देख लो, मैंने कहा। तो उन्होंने ने मेरा पेटीकोट खोला, मेरा ब्लाउज और ब्रा उतारा और फिर मुझे खड़ा करके देखा, मेरे सारे बदन पे अपने हाथ फिराए, मेरे सारे बदन को चूमा। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। प्यार कैसे करते हैं ये उन्होंने मुझे बतलाया था और मेरे जिस्म के हर एक अंग को अपने चुंबनों से सहलाया था।